ओम शांति, ओम शांति। बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम कौन हो। तो आज की स्मृति क्या होगी? बाबा कहे कि बच्चे तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, ये कभी भी भूलो मत। पुरुषोत्तम संगम युगी क्यों बाबा कहते हैं और सच्चे क्यों कहते हैं? क्योंकि दो प्रकार के ब्राह्मण हैं, एक तो वो कुकवंशावली ब्राह्मण है, वो भी अपने आप को समझते हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, परंतु बाबा कहते वो तो कुख वंशावली है, मुख वंशावली नहीं है, और वो तो द्वापर युग से आए हैं। पर संगम युग पर तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। क्यों बाबा हमको सच्चे सच्चे कहते हैं? क्योंकि ब्राह्मणों की क्या निशानियां होती है वो सब हम बच्चों में है। ब्राह्मण किसको कहेंगे? जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, ब्रह्मा का आचरण अपनाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्रह्मा भोजन खाए, जिनके पास ऊंचे से ऊंचा ब्रह्म ज्ञान है। तो बाबा कहते वो तो तुम बच्चे ही हो, इसलिए तुम सच्चे पुरुषोत्तम संगम योगी हो। और अगर ये सदा याद रहेगा तो क्या भी और साथ में याद रहेगा? सतयुग समय हमेशा आपके सामने रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ब्राह्मण देवता ही नमः वैसे भी भक्ति में कहते हैं। तो ब्राह्मण है सच्चे तो देवता बनने वाले हैं। सतयुग के झाड़ बाबा कहते तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई देने चाहिए, क्योंकि तुम अभी ये शरीर छोड़ा और जाकर देवता बनेंगे तो सतयुग में जाएंगे, स्वर्ग में सचमुच तुम बच्चे ही जाएंगे। भले वो कहते हैं कि फलाना शरीर छोड़ा भाई स्वर्गवासी हुआ, लेकिन स्वर्ग में तो ऐसे कोई जाएंगे नहीं, तो तुम बच्चे सचमुच में जाते हो स्वर्ग में। तो आज बाबा ने ब्राह्मणों की क्या विशेषता है वो समझाइए, और सदा इस नशे में रहना है ये भी बाबा बताते हैं। तो आज 7 जनवरी 2025 है। मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो, कभी भूलो मत। तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे तो खुशी रहेगी ना, बस हम जा रहे हैं उस नई दुनिया में, तो आप और अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न है, जो ज्ञान के शौकीन है, तो जरूर सब नहीं है ना शौकीन, परंतु जो सचमुच ज्ञान के शौकीन है उनकी निशानी क्या होगी? क्या फर्क होगा ज्ञान के शौकीन में और जो इतने शौकीन नहीं है? ठीक है बच्चे बने हैं बाबा के, ब्राह्मण है, ठीक है, लेकिन न ज्ञान के शौकीन नहीं है, तो जो सचमुच ज्ञान के शौकीन है उनकी क्या निशानी होगी? तो उत्तर है, वे आपस में ज्ञान की बातें करेंगे। जो ज्ञान की बातें नहीं करते, यहाँ की बात वहां की बात, झरमुई जगमुई उसकी उसकी, हाँ, तो वो माना ज्ञान के शौकीन नहीं है। और सचमुच हमने देखा है, हाँ, कोई ऐसे जा कहीं बातें करते हैं ना, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, फिर हम वहां पहुंच जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये इनका जो टॉपिक चल रहा है आपस में बातचीत का ठीक नहीं है, तो सीधा हम उनको ज्ञान की पॉइंट पर ले आते हैं। तो क्या होता है, वो टॉपिक बदल जाती है, ध्यान की पॉइंट पर आ जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, केवल यहाँ की वहां की बातें करना माना ज्ञान के शौकीन नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी, उत्तर है वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी पर चिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। तभी बाबा ने या जो भी पांडव भवन में मकान बनाए सब में छत रखी है ताकि छत पर आप टहल सको और मंथन कर सको। तो एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। प्रश्न है दूसरा भी, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो। वैसे तो कहते हैं दुनिया में संसार एक ड्रामा है, एक खेल है, नाटक है, लेकिन ये सृष्टि का जो ड्रामा है उसका ऐसा कौन सा राज है जो केवल हम बच्चे ही समझते हैं। तो उत्तर है, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, क्षण क्षण हर चीज बदलती जाती है। तो मैनेजमेंट में ये वाक्य आता है, इस दुनिया में सब कुछ बदलता है, एवरीथिंग चेंजेस एक्सेप्ट चेंज, परिवर्तन ये शब्द नहीं बदलता, ये सदा है ही है, इसीलिए सदा ही परिवर्तन होता ही रहता है। ये इस सृष्टि का, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के पास, एक शिव बाबा ही कायम है। प्रकृति तो है लेकिन परिवर्तनशील है, आत्मा भी तो सतो रजो तमो स्थिति में आती है, इसीलिए वो भी प्रकृति के संग में आकर के परिवर्तित हो जाती है, सतो रजो तमो में आती है। प्रकृति भी सतो रजो तमो में आती है, लेकिन एक परमात्मा ही है जो इनसे ऊपर है। तो इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए, अगर सब सतो रजो तमो में आए तो फिर तमो से सतो में कौन ले जाए, जो इस सतो रजो तमो से परे है वही ले जाएगा फिर सतो में। इसलिए पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए, ये भी ड्रामा का राज है जो तुम बच्चे ही समझते हो। कितना बड़ा राज है, यहाँ भगवान अपरिवर्तनशील है, हम बाकी इस संसार में सब परिवर्तनशील है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाले बाप समझा रहे हैं, ये तो बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं। अपने को ब्राह्मण समझते हो वह ये भी भूल जाते हो, अगर पर चिंतन में लगे रहेंगे तो ब्राह्मण है ये थोड़ी समझेंगे, भूल जाएंगे ना, क्योंकि ब्राह्मण माना जो सदा ब्रह्म ज्ञान का ही मनन चिंतन करे, ईश्वरीय ज्ञान का करे, और बातों में जाए तो ब्राह्मण का हुआ। तो बाबा कहते हैं तो अपने को ब्राह्मण समझते हो वह ये भी भूल जाते हो, ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता है। हमने देखा लौकिक ब्राह्मण जो होते ना तो वो उनको तो बड़ा नशा होता है, मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, कितना बड़े नशे से कहते हैं। और हम ब्राह्मण जो सच्चे सच्चे हैं भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता है, तुमको भी ये जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है, केवल यही याद रहे मैं सच्चा सच्चा ब्रह्मा मुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूँ, बस यही याद रहे तो बेड़ा पार है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तो तुम हो, मंथन चलता रहे तो तुम्हारा टाइटल क्या है, रूप और बसंत, बाबा की याद में भी रहते हो और ज्ञान का मनन चिंतन करके वही सुनाते हो, तो तुम हो रूप बसंत। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है तो रतन निकलने चाहिए, इस मुख से पत्थर तो कभी नहीं निकलने चाहिए, रत्न ही निकलने चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रत्न भरे हुए हैं। अपने को समझना है हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। कोई तो ये भी समझते नहीं है। अगर अपने को संगम युगी समझे तो सत्युग के झाड़ देखने में आए और अथाह खुशी में रहे। बाप जो समझाते हैं वो अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युग पर हैं, ये भी तुम्हारे सिवा और कोई को पता नहीं है। हम जा रहे हैं सत्युग में और अभी संगम पर है, कलयुग का किनारा छोड़ दिया है। बाबा कहते ये भी कई बच्चे समझते नहीं है। तो ये भी तुम्हारे सिवा और कोई को पता नहीं है। संगम युग की पढ़ाई टाइम तो लेती है ना, 100 साल संगम का तो थोड़ा टाइम तो लगता है ना। ये एक ही पढ़ाई है, नर से नारायण, नर्कवासी से स्वर्गवासी बनने की। और कोई पढ़ाई नर्कवासी से स्वर्गवासी बनने की नहीं होती है। नर से नारायण बनने की और कोई पढ़ाई नहीं होती है, सिवाय जो बाप हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये याद रहने से भी खुशी रहेगी। हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं, संगम युग वासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। अगर संगम युग निवासी नहीं समझते तो फिर स्वर्गवासी भी कहां बनेंगे। आगे नर्कवासी थे तो बिल्कुल कैसी अवस्था थी, नर्कवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, छीछी अवस्था थी, गंदे काम करते थे। अब वो मिटाना है, मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है तो पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है, तो वो कहेगा स्वर्गवासी हो गई। स्वर्ग क्या चीज है वो नहीं जानते, कहते तो है स्वर्गवासी हुआ, लेकिन स्वर्ग है क्या चीज बाबा कहते नहीं जानते। अगर स्वर्गवासी हुई, हाँ अगर सचमुच जानते हैं स्वर्ग क्या है और स्वर्गवासी हुई, फिर तो खुश होना चाहिए। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, अंदर विचार चलना चाहिए। हम अभी संगम पर हैं, पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं हम संगम पर हैं, पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। ये घड़ी घड़ी सिमरण करना है, भूलना नहीं है। परंतु बाबा को परंतु भी जरूर कहना पड़ता है, क्यों? क्योंकि परंतु माया भुला कर एकदम कलयुगी बना देती है। परंतु हाँ, माया तो है ही बीच में, वो भुला करके ये बातें और नर्कवासी बना देती है, कलयुगी बना देती है। एक्टिविटी ऐसी चलाती है, हाँ चलती है, जो एक्टिविटी जिनकी ऐसी होगी तो मना वो नर्कवासी हो गए ना। जैसे एकदम कलयुगी, वो खुशी का पारा नहीं रहता। शकल जैसे मुर्दे मिसल है संगम युगी ब्राह्मण, इतना ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन अगर सचमुच वो ज्ञान का मनन चिंतन नहीं, और बातों का व्यर्थ और अशुद्ध जो भी है वो ही चिंतन होगा तो शक्ल कैसी होगी पता चल जाता है ना। कहते हैं फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरे से पता चल जाता है कि मन में क्या चल रहा है। तो उदासी होगी, निराशा होगी, जैसे मुरझाए हुए होंगे, तो जैसे मुर्दे की शक्ल, कोई वो खुशी का एक्सप्रेशन तो होता नहीं है। तो बाबा कहते हैं शक्ल जैसे मुर्दे मिसल। तो बाप भी कहते हैं सब काम चिता पर बैठ जल कर मुर्दे हो पड़े हैं। हाँ, ये भगवान के सिवाय कौन कहे। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो वो खुशी होनी चाहिए ना, इसलिए गायन भी है। खुशी का कौन सा गायन है? अति इंद्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो, यह है सच्ची खुशी का गायन। तुम अपनी दिल से पूछो हम उस भासना में रहते हैं, उस अति इंद्रिय सुख में रहते हैं, उस भासना में रहते हैं। तुम ईश्वरीय मिशन हो ना। अब ईश्वरीय मिशन का काम क्या है? सबको ईश्वरीय बनाना, सबको परमात्मा का बनाना, परमात्मा का परिचय देकर फिर सच्चा ब्राह्मण बनाना, ये ईश्वरीय मिशन का काम है। वो मिशन वाले माना मशीन नहीं, मिशन। अब वो क्रिश्चियन मिशनरी होती है, मिशन होती है, और इस्लाम मिशनरी होती है, वो सबको कन्वर्ट करते रहते हैं। पर हमारी ईश्वरीय मिशन क्या करती है? सबको ज्ञान दे करके ब्राह्मण बनाती है। तो बाबा कहते हैं तुम ईश्वरीय मिशन के हो ना। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण बनाती है, फिर उसके बाद ब्राह्मण से फिर देवता बनाती है। अब ये हमारी ईश्वरीय मिशन का काम है। हम ब्राह्मण हैं ये भूलना नहीं चाहिए। वो ब्राह्मण तो झट कह देते हैं ब्राह्मण है, वो कभी नहीं बोलते हैं ब्राह्मण है। लोग हमने देखा अपने बाबा के बच्चों में भी, वो कई ऐसे बाबा के ब्रह्मा कुमार भी कुमारी, वो पहले बताएंगे मैं ना ब्राह्मण हूँ। अच्छा भाई, ब्राह्मण तो हम भी है, तुम भी तो हो, लेकिन तुमको नशा है। देखो हम बच्चों को नशा नहीं, और उनको लौकिक ब्राह्मण का नशा भूलता नहीं है। तो बाबा कहते ये भूलना नहीं चाहिए। वो ब्राह्मण तो झट कह देते हैं ब्राह्मण है, वो तो है कुख की संतान, तुम हो मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए, गायब हुआ भी है। हाँ, ब्राह्मण कौन गायब भी हुआ है? ब्रह्मा भोजन। तो सच्चे ब्राह्मण केवल ब्रह्मा भोजन खाएंगे। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। किसको कहेंगे ब्रह्मा भोजन? जो पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का बनाया हुआ खाए, वो है सच्चा ब्रह्मा भोजन। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए, कोई अपवित्र कर्तव्य भी नहीं करना चाहिए। अब टाइम तो लगता है। हाँ, क्यों टाइम लगता है? क्योंकि जन्मते ही तो कोई नहीं बनता, बल ज्ञान में आए अलौकिक जन्म लिया, लेकिन एकदम से पक्के हो जाए वो तो बाबा कहते नहीं होता। भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। एक बार पहचान कर कहा, हाँ पहचाना बाबा को और मुख से कहा, ये प्रजा पिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा वलद शिव, ब्रह्मा केयर ऑफ शिव। ब्रह्मा किसकी संतान? शिव की संतान। तो केयर ऑफ लिखते ना भाई, इसके द्वारा, तो शिव बाबा के द्वारा ब्रह्मा बना। तो ब्रह्मा वलद शिव, निश्चय करने से ही वारिस हो जाता है। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे, ब्रह्मा की संतान बने, सच्चे ब्राह्मण बने, फिर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए बीच बीच में बाबा सावधान भी करते हैं, तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। जैसे काशी करवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुक्त हो जाता है। जो काशी करवट खाते थे, मुक्ति के लिए ही कुएं में कूदते हैं, कूदते थे। यहाँ तो वो बात नहीं है, अभी तो सरकार ने बंद करा दिया, अंग्रेज जैसे आए उन्होंने बंद करा दिया। पहले तो बहुत कट्टर शिवपंथी होते थे, वह शिव पर पूरा बलिदान, पूरा जैसे समर्पित होना है तो गला ही काटते थे, और वो शिव के वो शिवलिंग वो कुएं में जाकर के वो उनका सिर पड़ता था, वही शिव पर कुर्बान हो गए। तो बाबा कहते हैं सजा खाने से हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। उस समय सजा खाई खाएंगे और हिसाब किताब चुकतू होगा, लेकिन वापस तो नहीं जा सकते। मुक्ति के लिए ही कुएं में कूदते हैं कि बस मोक्ष मिल जाए, शिव पर हम बलि चढ़ते हैं। यहाँ तो वो बात नहीं है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो। यहाँ कोई सिर काटने की बात नहीं है, बस यहाँ पर बाबा क्या कहते हैं, बस मुझे याद करो, इस वो फांसी पर लटके रहो। तो ये बाबा कहे शिव बाबा बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो, तो कितना सहज है, फिर भी माया का चक्र आ जाता है। ये तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है, वो युद्ध भी इतनी बड़ी नहीं होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुए तो बस कितने 6-7-8-10 साल चलो वो भी हुआ, 6 साल ही चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन ये युद्ध माया से हमारी 100 साल संगम युग जितना समय है। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है, बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती है, तुम तो जब से आए हो तुम्हारी युद्ध शुरू हुई, पहले तो माया को जानते ही नहीं थे और माया के वश थे ये भी पता नहीं था, लेकिन जैसे ज्ञान मिला पता चला ये माया है जिनको जीतना है, तो युद्ध चालू हो गई। तो युद्ध शुरू हुई जब से बाबा के पास आए, पुराणों से कितनी युद्ध चलती है, पुराने भी ऐसे नहीं कि उनकी युद्ध समाप्त हो गई, उनकी भी युद्ध चलती है, नई जो आएंगे उनसे भी चलेगी, युद्ध चलती रहती है, उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं, है ना, होता है ना, वो लड़ाई में जाते कितने मरते हैं सोल्जर्स अपने, तो वो कहेंगे भाई शहीद हो गए युद्ध के मैदान में, लड़ते लड़ते मर गए तो शहीद हो गए, फिर मरते हैं फिर दूसरे भी फिर दाखिल होते हैं अंदर, वो उनकी भर्ती करते रहते हैं ना, आजकल तो बहुत भर्ती कर रहे हैं, तो उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं, यहाँ भी मरते हैं, माया उनको मार डालती है, वृद्धि को भी पाते हैं, नए नए भी बनते हैं, झाड़ बड़ा तो होना ही है, बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं ये याद रहना चाहिए, क्या याद रहे सदा, वो हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सतगुरु भी है, ये भी सदा याद रहे। श्री कृष्ण को तो सतगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे, तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों के लिए ये भी गायन है, ब्राह्मण किसको कहेंगे जो यज्ञ करे और उसमें स्वाहा करता जाए, स्वाहा करे और कराए, जो स्वाहा करे और कराए वो ब्राह्मण, जो यज्ञ रचे और दूसरों को उसमें स्वाहा कराए खुद भी करे, पढ़े और पढ़ाए उसको भी ब्राह्मण कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए, महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं उनों को तो बहुत खुशी रहती है, जहां से निमंत्रण मिलता है भागते हैं, प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं, कौन कौन प्रदर्शनी में समझाएंगे, हाँ वो बाबा कहते ऐसे वैसे को नहीं भर्ती करना है, वो ऐसे वो समझा भी नहीं सकेगा और फिर बाबा कहते नाम बदनाम करेगा, तो जो होशियार बच्चे वही प्रदर्शनी समझाने के लिए आए, तो अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं, उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं, सर्विस करते रहे तो कहेंगे ये ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं, ब्राह्मण बनाते रहते हैं, बाप भी खुश होगा ये तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, हाँ यहाँ भी कितनी अच्छी सर्विस होती है ना, ओम शांति भवन में कितनी पार्टियां आती है, हम तो देखते हैं कई अपने भाई बहने थोड़ा समय मिला ओम शांति भवन चले जाते हैं और कितनी पार्टियों को समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप भी खुश होगा ये तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, अपने दिल से पूछना चाहिए हम सर्विस करते हैं, हम सर्विस करते हैं अपने दिल से पूछना चाहिए, कहते भी है ना ऑन गॉड फादरली सर्विस, हम सब गॉड फादरली सर्विस पर हैं, गॉड फादर की सर्विस क्या है, क्या है गॉड फादर की सर्विस, सबको ये पैगाम दो मन मना भाव, ये पैगाम सबको दो, ये गॉड फादरली सर्विस, आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है, तुम्हारा नाम ही है जो दूसरों को देते रहते हैं और खुद भी मनन चिंतन करते रहते हैं, उनको बाबा कौन सा टाइटल देते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी, तो उसका चिंतन चलना चाहिए। हाँ, स्वदर्शन चक्रधारी है तो हमारा भी चिंतन चलना चाहिए। स्वदर्शन चक्र रुकना थोड़ी चाहिए, वो तो चलता। एक बार दिखाते ना, श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चालू किया और वो घूमता 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 असुर के पास आया, और उसका जब तक गला न काटा और फिर वापस न आया तब तक वो चलता ही रहता है स्वदर्शन चक्र। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र रुकता थोड़ी है। तो तुम चैतन्य, अभी स्वदर्शन चक्रधारी का अभी तीसरा टाइटल, तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, तो लाइट हाउस भी तो सदा लाइट देता ही रहता है ना। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है, बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते हो, वो ज्ञान का सागर पतित पावन है, गीता का भगवान है, वही ज्ञान और योग बल से ये कार्य कराते हैं। नई दुनिया की स्थापना ब्राह्मणों द्वारा कैसे कराते हैं? ज्ञान और योग के बल से। वही ज्ञान और योग बल से ये कार्य कराते हैं। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वो भी तुम अभी सीखते हो। सन्यासी तो हठ योगी है, वो पतितों को पावन बना न सके। हाँ, पतितों को पावन नहीं बना सकते, गृहस्थियों को ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम घर में रहते पवित्र बनो, कभी नहीं कहेंगे। हाँ, सन्यासी बन गया तो ठीक, परंतु घर में रह के पवित्र रहो ये कभी नहीं कहेंगे। वो पतितों को पावन बना न सके। ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है, गीता माता है और उसका पिता को, और पिता कौन? परमात्मा। तो गीता को माई बाप कहा जाता है, मात पिता है ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर मात पिता चाहिए। मनुष्य तो भल गाते हैं परंतु समझते थोड़ी है, बाप समझाते हैं इसका अर्थ कितना गोई है। अब माँ बाप कौन? चलो शिव बाबा बाप हो गया, गीता हमारी माता हो गई, लेकिन माई बाप क्यों बाबा कहते? इसका अर्थ तो कितना गुह्य है। गॉड को फादर कहा जाता है, परमात्मा को फादर कहा जाता है, और फिर कहते हैं मात पिता। तो फिर माँ कौन? अगर फादर गॉड है तो फिर माँ कौन? फिर मात पिता क्यों कहा जाता है? तो बाबा ने समझाया है, माँ कौन हो गई? ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्मा माँ हो गई। वह सरस्वती माँ है परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर माँ ब्रह्मपुत्रा है। पर मेल शरीर है इसीलिए पुत्रा का, हाँ ब्रह्मपुत्री नहीं का। पर ब्रह्मा वलद शिव है तो ब्रह्मा सजनी हो गई शिव की। तो बाबा कहते हैं वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्रा है, सागर और ब्रह्मपुत्रा है। पहले पहले संगम इनका होता है, कहाँ वो ये कहाँ से आती है ब्रह्मपुत्रा नदी? कैलाश पर्वत से, हिमालय का भी जो कैलाश पर्वत है उस पर अभी तक कोई नहीं चढ़ा है। एवरेस्ट पर तो चढ़े हैं, भले वो सबसे ऊंचा माउंटेन है लेकिन कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ा है। दिखाते हिमालय की रेंज में माउंट कैलाश, तो उस और वहां से वो ब्रह्मपुत्रा नदी है। कहाँ कहाँ इतना लंबा उसका रूट होता है और कहाँ जाकर के वो बिहार बे या बंगाल में वो ब्रह्मपुत्रा सागर में जाती है, फिर गंगा उसमें मिल जाती है। तो इसीलिए गंगा सागर भी कहते हैं और ब्रह्मपुत्रा और सागर का मिलन कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मपुत्रा है सच्ची सच्ची मदर, सागर और ब्रह्मपुत्रा है। तो पहले पहले संगम इनका होता है, ब्रह्मपुत्रा सागर में जाके मिलती है, बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। अब ये संगम हुआ, शिव बाबा सागर, वो ब्रह्मा तन में प्रवेश हुआ। ये कितनी महीन बातें हैं, बहुतों की बुद्धि में ये बातें रहती नहीं जो चिंतन करे, बिल्कुल कम बुद्धि है। अब चिंतन नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे, कम बुद्धि है, कम दर्जा पाने वाले हैं, उनों के लिए बाप फिर भी कहते हैं चलो अभी पूरा नहीं समझ पाते हो, ये सब बहुत गुहिया बातें, कोई बात नहीं, अपने को आत्मा तो समझो, ये तो सहज है ना। हम आत्माओं का बाप परमात्मा है, वो तुम आत्माओं को कहते हैं माम एकम, याद करो तो विकर्म विनाश हो। मुख्य बात तो यही है, चलो और बातें नहीं समझ सकते हो तो मुख्य बात तो यही है। डल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ न सके, इसीलिए गीता में भी है, अब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं गीता के अंदर, लेकिन फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ सकते हो तो सबसे सार बात क्या है, मन मना भाव, बस मन को मेरे में लगाओ, बस और कुछ नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बातों में मत जाओ। इसीलिए गीता में भी है मन मना भाव, सभी लिखते हैं बाबा ये याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कोई न कोई पॉइंट पर हारते हैं, ये बॉक्सिंग है माया और ईश्वर के बच्चों की, बच्चे बने शिव बाबा के और बॉक्सिंग चालू हुई माया से, माया के साथ, ये बॉक्सिंग है माया और ईश्वर के बच्चों की, इसको कहा जाता, इसका किसको भी पता नहीं है। बाबा ने समझाया है माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है, तो पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, अब संबंध और बंधन बाबा ने इसका कॉन्ट्रास्ट बताया है, पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में सतयुग में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए, द्वापुर से कर्म बंधन में आ गए, पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी, कर्म बंधन न सुख का न दुख का था, परम धाम में न पर कर्म बंधन है न कर्म संबंध है, दोनों से परे है, वह शांति में है, पवित्र आत्मा है, तो कर्म बंधन न सुख का न दुख का था, फिर सुख के संबंध में आए, सृष्टि मंच पर आए तो सुख के संबंध में आए, ये भी अभी तुम समझते हो हम संबंध में थे, सत्युग त्रेता में कर्म संबंध में थे, अभी दुख में है, फिर जरूर सुख में होंगे, नई दुनिया जब थी तो मालिक थे पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े हैं, फिर हम सो देवता बनते हैं, तो ये याद करना पड़े ना, ये नहीं भूलना चाहिए, हम सो देवता बनते हैं, अभी हम सो ब्राह्मण हैं, ये याद करना पड़े ना। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे, मिट जाएंगे, तुम मेरे घर में आ जाएंगे, वाया शांति धाम, फिर सुख धाम में आ जाएंगे, तो पहले पहले जाना है घर, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे, मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ। किस लिए पवित्र बना रहा हूँ, पतित पावन क्यों पवित्र बना रहे हम बच्चों को, घर ले जाने के लिए, घर जाना है तो पवित्र बने, बिना तो घर नहीं जा सकेंगे, तो घर आने के लिए ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती है। बरोबर अभी चक्र पूरा होता है, हमने इतने जन्म लिए हैं, अब बाप आया है पतित से पावन बनाने, योग बल से ही पावन बनेंगे, ये योग बल बहुत नामी ग्रामी है, जो बाप ही सिखला सकते हैं, इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं है, तो सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहां भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही चलता रहे, एकांत तो बहुत है मधुबन में, एकांत तो बहुत है, ऊपर छत पर तो डरने की बात ही नहीं है, हाँ वहां चले जाओ तो डरने की बात ही नहीं है। आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर, बाबा पहाड़ों पर ले जाते थे, माउंट आबू जब आए तो बेगरी पाठ भी था, तो बाबा सवेरे मुरली के बाद सब बच्चों को पहाड़ों पर ले जाते थे, जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ों पर जाकर बैठते थे, और वहीं जो भी माउंट आबू के कई पेड़ों में उस समय तो बहुत कुछ थे, फल कंदमूल जो भी मिलता था वही खाते थे, तो वही खाते थे और पेट भर जाता था, तो नाश्ता कोई बनाने की जरूरत ही नहीं होती थी। तो बाबा कहते हैं वो तो आपस में ज्ञान की बातें। हाँ, आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर, जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे, और मम्मा बाबा लीडर वो आगे रहते थे और बच्चे पीछे पीछे, कोई नहीं जाना चाहते थे, अरे बाबा जा रहा चलो चलो चलो, हाँ वो सब चले जाते थे पहाड़ों पर। तो बाबा कहते हैं जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे वो ज्ञान के शौकीन होंगे, वो तो आपस में ज्ञान की बातें करेंगे। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वो तो आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, ज्ञान नहीं है तो फिर पर चिंतन करते रहेंगे। प्रदर्शनी में तुम कितनों को ये रास्ता बताते हो, समझते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको ब्राह्मण बनाते हो और आप और जानते हो कि ये ब्राह्मण वर्ण कहो धर्म कहो देवता धर्म ये कितना सुख देने वाला है, तो सबको सुख का रास्ता बताते हो। दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि बाप को याद करो तो बाप के पास चले जाएंगे, और धर्म वालों को इतना ही समझाना है, ये नहीं समझना है क्या कि ये किस धर्म का है, ये मुसलमान है और मैं तो फलाना हूँ, नहीं आत्मा को देखना है। क्योंकि जब ये आते हैं ना लोग कई पूछते हैं यहाँ पर आप सबको अलाउ करते हो, सब आ सकते काम की, बिल्कुल क्यों नहीं आ सकते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी या जो भी है सबको अधिकार है भगवान को पहचानने के लिए, पहचानने का, तो इसलिए सब आ सकते हैं क्योंकि सबका पिता तो एक ही है। तो बाबा कहते हैं ये नहीं समझना है कि ये तो मुसलमान है मैं फलाना हूँ, नहीं आत्मा को देखना है, आत्मा को समझाना है। प्रदर्शनी में समझाते हो तो ये प्रैक्टिस रहे, वहां तो सब धर्म वाले आएंगे एग्जीबिशन समझने के लिए, तो ये प्रैक्टिस रहे प्रदर्शनी में समझाते समय कि हम आत्मा भाई को समझाते हैं, हम आत्मा भाई को समझाते हैं। अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, अपने को आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास, बहुत समय बिछड़े हो, क्या कहना है उन आत्माओं को, अभी चलो बाप के पास बहुत समय बिछड़े हो उस बाप से, वो है शांति धाम, यहाँ तो कितनी अशांति दुख आदि है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो, तो क्या होगा, आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालेंगे तो नाम रूप देह सब भूल जाए। फलाना मुसलमान है ऐसे क्यों समझते हो, आत्मा समझकर समझाओ, समझ सकते हैं ये आत्मा अच्छी है या बुरी, अब ये जरूर समझना है ये आत्मा अच्छी है या बुरी, अगर वो गंदी दृष्टि वाला हो या कुछ ये लगता है कि ये इसके विचार ठीक नहीं है तो फिर भले उनसे दूर रहो, परंतु ये नहीं ये धर्म वाला इसलिए मैं नहीं समझाऊंगा, आत्मा को देखना है। तो बाबा कहते हैं ये आत्मा अच्छी है या बुरी है, आत्मा के लिए कहा जाता है बुरे से दूर भागना चाहिए, ये आत्मा के लिए कहते हैं ना कि फलाने धर्म का है तो इनसे दूर भागना, पर ये आत्मा इसका संस्कार अच्छे नहीं है दृष्टि अच्छी नहीं है तो फिर भले दूर भागो। तो आत्मा के लिए कहा जाता है बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो, यहाँ पाठ बजाया अब फिर वापस चलना है, पावन बनना है, बाप को जरूर याद करना पड़े, पावन बनेंगे तो पावन दुनिया का मालिक बनेंगे, बिना पावन बने पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकेंगे। जुबान से प्रतिज्ञा करनी होती है, प्रतिज्ञा करते हैं ना मुख से, तो जुबान से प्रतिज्ञा करनी होती है। बाप भी कहते हैं प्रतिज्ञा करो, बाप युक्ति भी बताते हैं कि तुम आत्मा भाई भाई हो, पवित्र रहने की युक्ति क्या है, आत्मा भाई भाई है। फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो। भाई बहन कभी विकार में जा नहीं सकते। पवित्र बन और बाप को याद करने से तुम विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो समझाया जाता है, माया से हारे फिर उठकर खड़े हो जाओ। चलो माया ने एक थोंशा मारा और गिरे, चलो गिरे भी फिर उठ के खड़े हो जाओ। जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी। ना यानी घाटा और जमा तो होता ही है ना, आधा कल्प जमा फिर रावण राज्य में ना हो जाता है, घाटा पड़ना शुरू हो जाता है रावण राज्य में। हिसाब है ना, जीत माना जमा और हार माना ना, ना माना घाटा। तो हार माना घाटा, जीत माना जमा। तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए। बाप को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होगी। वो तो सिर्फ गायन करते हैं, परमात्मा की महिमा करते हैं, गायन करते हैं, पर समझते तो नहीं है ना आखिर परमात्मा कौन है। बेसमझी से सब कुछ करते हैं। तुम तो पूजा आदि करते नहीं हो, बाकी गायन तो करते हो ना। हम भी शिव बाबा का कितना गायन करते हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, कितना गायन करते हैं। तो तुम भी गायन तो करते हो, बाकी वो कर्म कांड वो नहीं करते। उस एक बाप का गायन है, अभी उस एक बाप का ही गायन अगर हम करते हैं तो इसको क्या कहेंगे, अव्यभिचारी। बस एक का ही गायन करो, वो है अव्यभिचारी। पाप आकर तुम बच्चों को आपे ही पढ़ाते हैं। तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। चक्र स्मृति में रहना चाहिए, समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते हैं, फिर कैसे हार खाते हैं। चक्र में सब आ जाता है, कैसे माया पर जीत पाते हैं, फिर कैसे माया से हार खाते हैं। बाप समझाते हैं, हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। तो बाप कहते हैं, सतगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो ठौर नहीं पाएंगे। ये सत्य नारायण की कथा है, इसको कोई नहीं जानते। ये सत्य नारायण की भी कथा है। गीता अलग, सत्य नारायण की कथा अलग कर दी है। वास्तव में बाबा कहते हैं, नर से नारायण बनने के लिए ये बाप कहते हैं। नर से नारायण बनने के लिए ये बाप कहते हैं, हम तुमको नर से नारायण बनने के लिए कथा सुनाता हूँ। इसको ही गीता भी कहेंगे। गीता का ज्ञान किस लिए है, नर से नारायण बनने के लिए। तो वो सत्य नारायण की कथा भी है। सत्यनारायण की कथा क्या है, नर से नारायण बने, नारायण से फिर नर कैसे बने, कंगाल बने, फिर सत्यनारायण की कथा की तो धनवान बने, फिर भूल गए तो कंगाल बन गए। तो इसी यही कथा है। तो बाबा कहते हैं, तो नर से नारायण बनने की कथा है, उसी को गीता कहेंगे। गीता भी यही सिखाती है। तो इसको ही गीता भी कहते हैं, अमरनाथ भी की कथा भी कहते हैं। तीसरा नेत्र बाप देते हैं तो तिजरी की कथा भी है। ये भी जानते हो, हम देवता बनते हैं तो गुण भी तो जरूर होने चाहिए। फिर बाबा कहते हैं, भूलो मत, हम देवता बन रहे हैं तो गुण भी तो होने चाहिए। इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम है नहीं। क्यों बाबा ने ये कहा, क्योंकि भाई देवता बन गए फिर मनुष्य क्यों बनेंगे। लेकिन इस सृष्टि में कुछ भी एक चीज कायम नहीं है, सब परिवर्तन होता है। तो परंतु इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम है नहीं। सदा कायम कौन है, केवल एक शिव बाबा ही है। बस सदा कायम केवल एक शिव बाबा ही है, बाकी तो सबको नीचे आना ही है। परंतु वो भी संगम पर आते हैं। शिव बाबा भी संगम पर तो आते हैं ना, भले वो सदा कायम है फिर भी आते तो है ना सृष्टि पर। संगम पर वो आते हैं, सभी को वापस ले जाते हैं। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ड्रामा के अंदर ये सब राज है। बाप आकर पवित्र बनाते हैं, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। इस समय बाप समझाते हैं आत्मा के पंख टूटे हुए हैं तो उड़ नहीं सकती। आत्म पंछी हाँ उड़ नहीं सकता क्योंकि पंख टूटे हुए हैं, परमधाम नहीं जा सकता। बाप आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं, योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पहले पहले तो मेहनत भी करनी चाहिए, हाँ बिना मेहनत के तो पानी भी नहीं मिलता है ना, मेहनत तो करनी चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं माम एकम याद करो, चार्ट रखो, जिनका चार्ट अच्छा होगा वो लिखेंगे और उनको खुशी भी होगी, चार्ट लिखने में खुशी भी होगी क्योंकि अच्छा चार्ट है। अभी सभी मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते तो योग का जौहर नहीं भरता। चार्ट लिखने में फायदा है बहुत, चार्ट के साथ पॉइंट्स भी चाहिए, हाँ ज्ञान की भी पॉइंट्स चाहिए चार्ट के साथ। योग का तो चार्ट लिखते हैं भाई, दो घंटा, एक घंटा, आधा घंटा, इस घंटे में इतना याद किया, परंतु ज्ञान का भी तो चाहिए चार्ट। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे, सर्विस कितनी की और याद कितना किया, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में होगा तो फिर सर्विस भी करेंगे तो उसका भी वो चार्ट है। तो सर्विस कितनी की और याद कितना किया, पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए। कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए? जो पिछाड़ी में कोई भी चीज याद न आए, कोई भी चीज याद न आए, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाए, ये मेहनत करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है, याद की यात्रा में रहे माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। दूसरा, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे, क्या रहे, कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। हाँ ये जरूर बुद्धि में हो। वरदान, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। कोई भी कार्य किया उसके नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे, केस और किस्से, हाँ क्या कितनी सारी रुकावटें आती है, कितने विघ्न आते हैं, ये केस और किस्से, दादी जी कहती थी केस और किस्से, ये सब समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन, मन स्लोगन है ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो। किसमें सिंधु बनो? ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु बनो। कितनी सुंदर बात, स्मृति में बिंदु बनो और ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो। बड़ा दिल, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो। बहुत जरूरी है सकाश देना। कमजोरों को बल दो। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सल्वेशन लेना नहीं है। हाँ, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए। सल्वेशन लेना नहीं है, सल्वेशन देना है। देने में लेना समाया हुआ है। तो क्या करो, शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो। तो कौन सी सकाश देनी है? 7 तारीख आज। तो पहले तो स्वमान रखो। क्या स्वमान रखो? मैं सल्वेशन आर्मी हूँ, सबको सल्वेज करने वाले, सबको सुख देने वाले, मैं सल्वेशन आर्मी हूँ। और योग अभ्यास क्या करो? मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ, सुप्रीम कमांडर और मुझ आत्मा के शुद्ध और शक्तिशाली संकल्पों के प्रकंपन से कमजोर आत्माओं को बल मिल रहा है, सहयोग और सल्वेशन मिल रहा है। ये योग अभ्यास करो, ये है सकाश देना। और धारणा क्या करो? मुझे दूसरों को सहयोग यानी सल्वेशन देना है। और चिंतन क्या करो? मुझे कौन कौन से खाते जमा करने हैं, ये चिंतन करो। खाता जमा करने की विधि क्या है, उसका चिंतन करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, एक बात आप सबको सुनाए, सकाश देने की जो बात आती है, तो हमारा बाबा का सुंदर सेवा केंद्र बर्मा में है। आप देखते हैं बर्मा के भाई बहने यहाँ आते हैं ना, वो कुमारियाँ कितनी आती है यहाँ, बहुत मीठी प्यारी बहने हैं, कितनी बाबा की वहाँ योग युक्त आत्माएं हैं। तो बर्मा में जैसे अभी युद्ध चल रहा है, और युद्ध भी कैसा चल रहा है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो सरकार मिलिट्री की सरकार है, परंतु वहाँ के जो युवक हैं वो मिलिट्री सरकार के विरुद्ध हो गए हैं। और वो मिलिट्री सरकार और युवकों के बीच, आप अंदर ही, देश के अंदर ही वो युद्ध जैसे चल रहा है। और फिर सरकार क्या कर रही है, जो भी युवा लोग हैं उनको पकड़ लेती है और पकड़ करके अपनी सेना में ले लेती है। अब बाबा के भी बहुत अच्छे युवक हैं, बच्चे बहुत हैं, युवा भाई बहने हैं, तो वो तो सेना में नहीं जाना चाहते हैं। वो तो बाबा के बच्चे हैं, तो अब उनको रख दिया, वहाँ बहुत अच्छा रिट्रीट सेंटर है, तो वहाँ उनको रखा है कईयों को, जो जिनके पीछे पड़े हुए ना, सरकार पीछे पड़ी है कि आप मिलिट्री में चलो, मिलिट्री में चलो, और वो युवक दूसरे जो है वो लड़ रहे हैं उनसे, तो बहुत कुछ संघर्ष है। तो उन्होंने लिखा है वर्मा वालों ने कि आप सब प्लीज सकाश दो हमारे हमारे देश को, ताकि शांति हो। और बाबा के बच्चे तो सुरक्षित हैं, लेकिन कई अपने जो पहचान वाले उनको गोली लगी है, मरे हैं, ऐसे देश में हो रहा है। और मैंने देखा, हम वहाँ गए थे पिछले साल ही गए थे, तो कितने जो है वो वहाँ से पलायन कर रहे हैं, युवा पलायन कर रहे हैं, देश छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत घमसान है। तो चलो अभी हम योग करेंगे, वो बर्मा के भाई बहनों को, अपने जो बाबा के प्यारे बच्चे हैं उनको हम सकाश देंगे, आज विशेष परोपकार का कार्य करेंगे, उन्होंने खास रिक्वेस्ट किया है। ओम शांति।